Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2022, Urdu, Higher Listening. There are two items on this recording. You will hear each item twice, with an interval of 1 minute between the two playings. Then you will have 2 minutes in which to write your answers before hearing item number two. Item number one. Zeynep talks about interview techniques. You now have 1 minute to study the questions for item number one.
आजकल के दौर में मुलाजमत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात इसके लिए कई बार इंटरव्यू देने पड़ते हैं और अक्सर नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। जल्द मुलाजमत ना मिलने पर हम नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कामयाब इंटरव्यू कैसे दिया जाए। सबसे पहले तो उन लोगों से मशवरा करें जो पहले से उसी तरह की नौकरी कर रहे हैं। दूसरा, कुछ तजर्बाकार लोग इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं, उनसे मदद ले लें और ये कि इंटरव्यू में कामयाबी का दारोमदार आपकी काबिलियत के साथ साथ आपकी शख्सियत पर भी होता है। आप अगर कितने ही अच्छे और काबिल शख्स हैं, फिर भी आपको इंटरव्यू की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही उन बातों के जवाब देने के लिए तैयार रहें जिनका आपने अपनी मुलाजमत की दरख्वास्त में ज़िक्र किया है। ख़ास तौर पर इंटरव्यू लेने वाला ये भी जानना चाहेगा कि पिछली मुलाजमत में आपकी क्या जिम्मेदारियां थीं, आपने कंपनी को तरक्की देने के लिए क्या इकदाम किए और क्या कभी आपने दफ्तर के अलावा घर से भी काम किया है। इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप इंटरव्यू देने जाने से पहले ही इस तरह के सवालात की तैयारी कर लें। आखिर में आपको ये मशवरा दूंगी कि इंटरव्यू पर जाने से पहले उस इदारे के बारे में जिस कदर हो सके मालूमात हासिल कर लें ताकि इस इदारे के अहम मसाइल को आप पहले से ही जान लें और उनके हल के लिए इंटरव्यू के दौरान तजावीज़ पेश कर सकें।
एंड ऑफ द फर्स्ट प्लेइंग।
आजकल के दौर में मुलाजमत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात इसके लिए कई बार इंटरव्यू देने पड़ते हैं और अक्सर नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। जल्द मुलाजमत ना मिलने पर हम नाउम्मीदी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कामयाब इंटरव्यू कैसे दिया जाए। सबसे पहले तो उन लोगों से मशवरा करें जो पहले से उसी तरह की नौकरी कर रहे हैं। दूसरा, कुछ तजर्बाकार लोग इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं, उनसे मदद ले लें। और ये कि इंटरव्यू में कामयाबी का दारोमदार आपकी काबिलियत के साथ साथ आपकी शख्सियत पर भी होता है। आप अगर कितने ही अच्छे और काबिल शख्स हैं, फिर भी आपको इंटरव्यू की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही उन बातों के जवाबात देने के लिए तैयार रहें जिनका आपने अपनी मुलाजमत की दरख्वास्त में ज़िक्र किया है। ख़ास तौर पर इंटरव्यू लेने वाला ये भी जानना चाहेगा कि पिछली मुलाजमत में आपकी क्या ज़िम्मेदारियां थीं, आपने कंपनी को तरक्की देने के लिए क्या इकदामात किए, और क्या कभी आपने दफ्तर के अलावा घर से भी काम किया है। इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप इंटरव्यू देने जाने से पहले ही इस तरह के सवालात की तैयारी कर लें। आखिर में आपको ये मशवरा दूंगी कि इंटरव्यू पर जाने से पहले उस इदारे के बारे में जिस कदर हो सके मालूमात हासिल कर लें, ताकि इस इदारे के अहम मसाइल को आप पहले से ही जान लें और उनके हल के लिए इंटरव्यू के दौरान तजावीज़ पेश कर सकें।
एंड ऑफ द सेकंड प्लेइंग। Item number 2. Moiz and Arij are talking about investing money. You now have 1 minute to study the questions for item number 2.
السلام علیکم معیز، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی ملازمت کیسی جا رہی ہے؟
وعلیکم السلام، ویسے تو میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں اپنی نوکری سے اتنا خوش نہیں ہوں، بلکہ میں تو نوکری چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں۔ کام کی ذمہ داریاں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن تنخواہ کام کے لحاظ سے کم ہے اور بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
پچھلی دفعہ جب ہم ملے تھے تو آپ اپنی ملازمت سے بہت خوش تھے۔ میرے خیال میں بار بار ملازمت تبدیل کرنا بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔
آپ نے ٹھیک کہا، اس وقت ہمارا گزارا اچھا ہو رہا تھا، لیکن اب میری بیٹی کو دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے فلیٹ کرائے پر لیا ہے اور کھانے پینے کا خرچ الگ ہے، اس لیے ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں اور اب اس تنخواہ میں گزارا مشکل ہے۔
میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ ملازمت کے ساتھ ساتھ کہیں سرمایہ کاری کریں تاکہ آپ کو کچھ اضافی آمدنی ملتی رہے۔
میں نے اس بارے میں سوچا تو بہت ہے، لیکن میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہی نہیں ہیں کہ کہیں سرمایہ کاری کر سکوں، اور مجھے اس بات کا بھی خوف ہے اگر کاروبار نہ چلا تو میری جمع کی ہوئی رقم ضائع ہو جائے گی۔
میرا مشورہ ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ محفوظ سرمایہ کاری کیسے کی جا سکتی ہے۔
جی، میں معلومات حاصل کر رہا ہوں اور کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کم رقم سے بھی چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی چیزیں خرید کر رکھ سکتے ہیں جن کی قیمت مستقبل میں بڑھنے کا امکان ہو۔ دوسرا، آپ بڑی دکانوں سے زیادہ مقدار میں چیزیں خرید کر چھوٹی دکانوں میں فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ کام تو آپ آسانی سے چھٹی والے دن بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے آپ کے دوسروں کے ساتھ کاروباری تعلقات میں اضافہ ہوتا جائے گا تو آپ اس کام کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔
اب آپ کا مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟
میں نے حال ہی میں شام کی کلاسوں میں ایک کاروباری تربیتی کورس کیا ہے، جس میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ کاروبار کے دوران اپنی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب ضرور لکھتے رہیں۔ دوسرا یہ کہ جو سامان بھی فروخت کریں اس کے اعلیٰ معیار کا خاص خیال رکھیں، گاہکوں کو سامان پہنچانے کے لیے وقت کی پابندی کریں، ورنہ آپ کے گاہک آپ سے ناخوش ہوں گے۔
تو اب آپ کون سا کاروبار شروع کریں گے؟
میں روزمرہ استعمال کا سامان گاہکوں کو ان کے گھروں میں پہنچانے کی سہولت دوں گا۔
امید ہے کہ آپ اپنے نئے کاروبار میں کامیاب ہوں گے۔
اینڈ آف دی فرسٹ پلیئنگ۔ Now listen to the second playing.
Assalamu alaikum Moiz, آپ کیسے ہیں؟ آپ کی ملازمت کیسی جا رہی ہے؟
وعلیکم السلام، ویسے تو میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں اپنی نوکری سے اتنا خوش نہیں ہوں، بلکہ میں تو نوکری چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں۔ کام کی ذمہ داریاں زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن تنخواہ کام کے لحاظ سے کم ہے اور بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
پچھلی دفعہ جب ہم ملے تھے تو آپ اپنی ملازمت سے بہت خوش تھے۔ میرے خیال میں بار بار ملازمت تبدیل کرنا بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔
آپ نے ٹھیک کہا، उस वक्त हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था, लेकिन अब मेरी बेटी को दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। हमने उसके लिए फ्लैट किराए पर लिया है और खाने पीने का खर्च अलग है, इसलिए हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए हैं और अब इस तनख्वाह में गुजारा मुश्किल है।
मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि मुलाजमत के साथ साथ कहीं सरमायाकारी करें ताकि आपको कुछ इजाफी आमदनी मिलती रहे।
मैंने इस बारे में सोचा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे ही नहीं हैं कि कहीं सरमायाकारी कर सकूं, और मुझे इस बात का भी खौफ है अगर कारोबार ना चला तो मेरी जमा की हुई रकम ज़ाया हो जाएगी।
मेरा मशवरा है कि आप तहकीक करें कि महफूज सरमायाकारी कैसे की जा सकती है।
जी, मैं मालूमात हासिल कर रहा हूँ और कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है कि आप कम रकम से भी छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी चीज़ें खरीद कर रख सकते हैं जिनकी कीमत मुस्तकबिल में बढ़ने का इम्कान हो। दूसरा, आप बड़ी दुकानों से ज़्यादा मकदार में चीज़ें खरीद कर छोटी दुकानों में फ़रोख कर सकते हैं। ये काम तो आप आसानी से छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके दूसरों के साथ कारोबारी ताल्लुकात में इजाफा होता जाएगा तो आप इस काम को बढ़ा भी सकते हैं।
अब आपका मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है?
मैंने हाल ही में शाम की क्लासों में एक कारोबारी तरबियती कोर्स किया है जिसमें हमें ये सिखाया गया था कि कारोबार के दौरान अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब ज़रूर लिखते रहें। दूसरा ये कि जो सामान भी फरोख्त करें उसके आला मयार का ख़ास ख्याल रखें, ग्राहकों को सामान पहुंचाने के लिए वक्त की पाबंदी करें वरना आपके ग्राहक आपसे नाखुश होंगे।
तो अब आप कौन सा कारोबार शुरू करेंगे?
मैं रोज़मर्रा इस्तेमाल का सामान ग्राहकों को उनके घरों में पहुंचाने की सहूलत दूंगा।
उम्मीद है कि आप अपने नए कारोबार में कामयाब होंगे।
एंड ऑफ द सेकंड प्लेइंग। You now have 5 minutes to look over your answers. End of taste.